విహారీ జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివర ధారీ జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివర ధారీ రాధమాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధమాధవ కుంజ విహారీ జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివర ధారీ యశోదానందన ప్రజనరంజన యశోదానందన వ్రజనరంజన యమునతీరా వనచారీ రాధమాధవ కుంజ విహారీ జయ జయ రాధమాధవ కుంజ విహారీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రే రామ రే రామ 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 హరే హరే Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Rama. Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada
Srila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Sato Jayamudhirayet Nashaptayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakter Bhavati Naishike Srimad Bhagavatam Skanda Das Adhyaya 9 Shloka Sankhya 11 Jagasam Sam Garudantam Akshini Patantam Achantam Anjat Mashini Anina Udvikshamanam हस्ते भय विह्वल तीक्ष्णं हस्ते गृहीत्वा दृश्यन्ति अवागुरात् सागसं त्वं वरुदन्तमक्षिणी सागसन्तं वरुदन्तमक्षिणी कृतागसन्तं वरुदन्तमक्षिणी कष्टं मञ्जमनसी स पाणिना कषन्तमञ्जन्तम मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भय विह्वलैक्षणम् उद्वीक्षमाणं भय विह्वलैक्षणम् हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवानुरात् हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्य वागुरात् सागसं त्वं वरुदन्तमक्षिणी कृतागसं त्वं वरुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मिनिषिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं वैविह्वलैक्षणम् हस्ते गृहीत्वा विशन्त्य मृगत्
Thank you.
लेक्षणम् सागसं त्वं प्रुदन्तमक्षिणी समाणं वयविह्वलेक्षणम् सन्त्वं प्रवृदन्तमक्षिणी प्रशन्तमञ्जन्मशिनी सपाणिना दीक्षमाणं भयवेह्वलेक्षणम् ते गृहीत्वा विषयन्त वागुरत् शब्दार्थ इस प्रकार है। कृतागतम अपराधी तुम कृष्ण को प्ररुदंतम रोते हुए अक्षिणी उसकी दोनों आंखें कशंतम भूलते हुए अजंत मशिनी जिसकी आंखों में लगा काजल आंसुओं के साथ सारे मुंह में फैल गया। सुपाणिना अपने हाथ से उद्वीक्षमाणम जो माता यशोदा द्वारा किस मुद्रा में देखे गए भय विह्वल इक्षणम अपनी माता के भय से जिसकी आंखें भयभीत दिखाई दी उसके हाथ में भीत पकड़कर शिष्यंति धमकाती हुई अवागुरत बहुत धीमे से डांटा। अनुवाद और तात्पर्य जुआएंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण अत्यधिक डर गए और उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। यूं ही माता यशोदा ने कृष्ण पर तुष्टि दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों से काजल से मिश्रित हो गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल गया। माता यशोदा ने अपने सुंदर पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे डांटना शुरू किया। तात्पर्य, माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों से हमें भगवान की प्रेम भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी ज्ञानी कर्मी तथा वेदांति जन कृष्ण को कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते। उन्हें उनसे बहुत दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है, किंतु वे ऐसे भी कर पाने में असमर्थ है। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरता है। अतः जैसा कि अजामिल की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक न जाने का आदेश दिया है। उन्हें पकड़ने वाली बात तो दूर रही। दूर से शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरता है, फिर भी वही कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में साथ ही देखकर उन्हें अपने को अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटने भी नहीं चाह रही थी, अतएव तुरंत छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव ना कर सके, नहीं तो तुम अपने संगतियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओगे। इसे ज्ञानियों योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के अनुयायियों से विपरीत भक्त की परम शक्ति में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है। कुमज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया शिक्षरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन्मैष्टमांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिताशिविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। सप्तकाञ्चनगौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज हम भागवतम के जो श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग ऐसा है कि यशोदा माई कृष्ण को बांध रही हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध लीला है जो हर कार्तिक में पूरा महीना इस लीला का गुणगान हम करते हैं। ये दामोदराष्टकम का उच्चारण के द्वारा दामोदराष्टकम को गाने से सुबह शाम हम दामोदराष्टकम को गाते हैं और कार्तिक महीने में कार्तिक व्रत करते हैं। सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है कार्तिक व्रत। वैसे मासानाम मार्गश्रेष्ठ चास्मी, भगवान कहते हैं सारे मासों में मार्गश्रेष्ठ श्रेष्ठ है। सारे भक्तों के लिए तो जैसे भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा, मार्गश्रेष्ठ मास है, लेकिन कृष्ण के लिए श्रेष्ठ मास क्या है, कार्तिक है, क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात देवी हैं श्रीमती राधा रानी। इसलिए कार्तिक मास को ऊर्ज मास कहा जाता है, ऊर्ज व्रत भी कहा जाता है कार्तिक व्रत को। तो कार्तिक व्रत को कैसे पालन करना चाहिए, उसके अनेकों अनेकों नियम हैं, लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं हरिभक्त विलास में कि भक्तों को ये जो दामोदर लीला है उसको पढ़ना चाहिए। कार्तिक मास का जो वैष्णव नाम है दामोदर मास। दामोदर मास का अर्थ क्या है कि जिस महीने में भगवान ने दामोदर लीला को प्रदर्शित किया इसलिए उसका मास का नाम है दामोदर मास। तो ये दामोदर लीला चल रहा है, राधा दामोदर। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात ये है कि ये लीला भगवान ने यशोदामय से किया लेकिन भगवान का नाम बड़ा राधा दामोदर। वैसे उनको यशोदा दामोदर करके नहीं बोलते, उनको हम कहते हैं कि वो राधा दामोदर। वैसे ये जो लीला भगवान ने यशोदामय के साथ किया, उनका उधर दाम के सहारा बांधा गया है, लीला भगवान राधा रानी से भी किया, राधा रानी ने भी बांधा था, इसमें उनका नाम है राधा दामोदर। तो बड़ा प्रसिद्ध लीला है, इतना प्रसिद्ध लीला है जैसे कृष्ण का नाम स्मरण होता है तुरंत ये लीला तो होगा ही, स्मरण होगा ही। कृष्ण के जो नट्य स्मृति वाली जो लीला है उनमें से जो लीला है ये सर्वश्रेष्ठ लीला है, सबसे विख्यात लीला है। अभी उसकी चर्चा इधर चल रही है। वैसे ये जो दामोदराष्टकम में जो वर्णन हुआ है इस लीला का, वो थोड़ा सा अलग से हुआ है। ये श्लोक में जब भगवान का वर्णन हो रहा है किस प्रकार रोने हैं, वो रोना शुरू किया और रोने के समय उन्होंने एक हाथ से दोनों आंखों को मसलना शुरू किया, क्योंकि दूसरे हाथ को यशोदा ने पकड़ लिया था। लेकिन उधर दामोदराष्टकम में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रजंतम परामभोज युग्मे नशाटंक नेत्रम, दोनों हाथों से दोनों आंखों को मल रहे थे। मुहुस्वसकम पत्र रेखांत कंठा, ये जो लीला है अलग अलग तरीके से भगवान भक्तों को प्रकाशित करते हैं। जब भगवान कोई भी लीला करते हैं कि हर बार एक ही जैसा नहीं करते, उसका कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है। जैसे कालिया दमन का लीला है तो कभी एक बार करते, कभी उसी लीला को अलग तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में एक ही लीला का वर्णन अलग अलग तरीके से मिलता है। और जब भक्त लोग अपनी अनुभूतियों को लिखते हंसते हैं कि जो कृष्ण का जो लीलाओं को किस प्रकार भगवान दिखाते उस हिसाब से वो भक्त रचना करते हैं। इसलिए शास्त्रों में लीलाओं के वर्णन में जो भेद दिखाई पड़ता है वो को इसके अंदर कोई दोष नहीं है, बल्कि भगवान की जो लीलाओं में रस की रस को पुष्ट करने वाली है। क्योंकि एक ही जैसा भगवान नहीं करते, जैसे कभी कभी भगवान का जो दधि मंथन फोड़ने की जो लीला है वो कभी पत्थर से फोड़ते हैं, कभी दधि का ये जो डंडा होता है उससे फोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही स्टीरियोटाइप लीला है, उसमें वेरिएशन है, वैरायटी है। तो खास करके आज के श्लोक में ये जो लीला है, ये श्लोक का मुख्य बात ये है, पिछले श्लोक में यशोदा मैंने कृष्ण को पकड़ लिया, कोई हो सकता ठीक है पकड़ लिया होगा, अभी कृष्ण को पकड़े ही नहीं है तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कृष्ण को पकड़ लिया तो क्या फर्क पड़ता है कृष्ण को, कोई पकड़े, इतने भगवान है ना वो थोड़ी ना डर जाएंगे। तो ऐसे कहा गया श्लोक में केवल कृष्ण पकड़े नहीं गए, पकड़ने के तो डर गए। तो कोई कहे डरे होंगे, नाटक करते होंगे, नहीं 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 ठीक है, अगर आप ये भी सोचते हो कि कृष्ण नाटक किया, ये बात समझो यशोदा ने उनको गाली देना शुरू किया, डांटा, तो हद हो गया अभी। कृष्ण को डांटे, तो ये दो बातें इस श्लोक में कहा गया है। देखिए कृष्ण यशोदा मैं से डर गए और रोना शुरू किया, और यशोदा मैं उस रोने को देखे थोड़ा सा शांत हो गए, लेकिन फिर भी पूरा उनकी गुस्सा नहीं गया। यशोदा मैंने क्या किया, चलो तुमको मैं थोड़ा सा हल्का से डांटूंगी, तो डांटना शुरू किया। तो ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान जो है कृष्ण जो है उनका स्वभाव है ये, वो भौतिकवादियों का स्तुति से ज्यादा उनकी भक्तों की डांट सुनना चाहते हैं, नेचर ऑफ कृष्ण। श्री विष्णु जी ठाकुर प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, जितने ब्रह्मा शिव जी अनेकों अनेकों बड़े बड़े देवता ये सब कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को ये स्तुति पसंद नहीं है, इतना यशोदा मैं का डांट। तो ऐसा कैसे, व्यक्ति आपको डांट है कि उनको आपको कैसे लग सकता है, असल में वो डांट के पीछे जो प्रेम है, वो क्रोध के पीछे जो प्रेम है उसका आस्वादन करते हैं कृष्ण। प्रेम में जो क्रोध होता है, जो डांट होता है, उसको विवृत कहा गया है। विवृत हमारा गौड़ी वैश्य सिद्धांत का सर्वोपरि चीज है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय संवाद में बहुत सारे बातें को चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के मुख से प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है बताओ, तो रामानंद राय ने श्लोक कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो बाह्य है, कुछ और कहो और कहो और कहो, कहते कहते प्रेम भक्ति का वर्णन किया, बाद में उसने कहा और कहो, दास के रस का वर्णन किया, बाद में उन्होंने कहा और कहो, बाद में कहा वो और कहो, ऐसा कहते कहते जब श्री राधारानी का गुणावली हुआ तो ये तो अद्भुत चीज है, कुछ और है तो कुछ कहो। तब रामानंद राय गीत का वर्णन करते हैं जिसका नाम है विवर्त, जिसमें गोपियां कृष्ण को ऐसे नम्रता से पेश करा रही है लेकिन अंदर जो है वो क्रोध है, क्रोध व्यक्त कर रही है। आहुष्टते नलिनापदारविंदम योगेश्वरे हृदय विचिन्त्य गाद बोधय। इस श्लोक में गोपियां बड़े नम्रता दीन भावना से कृष्ण की स्तुति कर रही है, लेकिन भले ही दीन भावना से कृष्ण की स्तुति कर रही है लेकिन अंदर क्या है, थोड़ा सा डबल मीनिंग के साथ कृष्ण को डांट भी रही है। तो ये जो शास्त्रों में कभी कभी गोपियां कृष्ण को कहती हैं, क्या कहती हैं, अच्छा तो तुम हो वही भगवान ना जो छुप छुप के एक बंदर को मारा था, हाँ, और एक व्यक्ति आपके पास है, सब कुछ निछार दिया, सब कुछ दे दिया आपको, लेकिन उसको खुद बांध के रखा, क्या न्याय है तुम्हारे पास, कुछ भी न्याय नहीं है। तो ये प्रेम में जो डांट है, जो जो कृष्ण को डांटना, ये प्रेम में इस प्रकार कृष्ण का निंदा जो है कृष्ण को और अच्छा लगता है। कृष्ण का निंदा जो है वो दो प्रकार होता है, एक है प्रेमवश होता है, दूसरा है द्वेषवश होता है। जो प्रेमवश जो डांट है, जैसे यशोदा माँ का डांट है, गोपियों का जो डांट है, वो कृष्ण को अति प्रिय है। लेकिन जो द्वेषवश जो डांटते हैं या निंदा किया जाता है, जैसे शिशुपाल ने किया था, वेण ने किया था, जो द्वेषवश भगवान को जो डांटा जाता है या निंदा किया जाता है, वो भी दो प्रकार का है। एक जो है कृष्ण में पूर्ण तल्लीन होकर डांटना या द्वेष करना, जैसे शिशुपाल कृष्ण को इतना गाली दिया, इतना उन्होंने डांटा, इतना उन्होंने निंदा किया, जैसे ये दिल से किया था। वैसे वेण ने भी कृष्ण का निंदा किया, कृष्ण को उन्होंने बहुत डांटा, निंदा किया, डांट नहीं बोला जा सकता, उसको निंदा कहा जाता है। लेकिन वेण कृष्ण का निंदा करने से वो नरक गया, लेकिन शिशुपाल ने कहा कि कृष्ण का निंदा किया लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। इसलिए परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो गए, परीक्षित महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वेण ने तो डांटा उनको, कृष्ण को निंदा किया तो नरक गया, शिशुपाल ने भी निंदा किया कृष्ण का, वो तो मुक्ति प्राप्त हुआ। वैसे कृष्ण का निंदा करने वाला नरक जाना चाहिए, नरक जाने की बात तो छोड़ो, अभी तो उसको पूरा हाथ पैर ढीला हो जाना चाहिए, उसको कुष्ठ रोग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुआ। तब इसके विषय में कहा गया है, शिशुपाल जब कृष्ण का निंदा कर रहे थे, बहुत डांट रहे थे, तो उस समय शिशुपाल के हृदय में 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करते उन्होंने किया, कृष्ण में पूरा तल्लीन होकर उन्होंने किया, न दिल से किया। अगर कोई किसी प्रेम करता है ना, जितना प्रेम में स्मरण होता है उससे ज्यादा द्वेष में स्मरण होता है। आप जिसको प्रेम करते हो, जितना दिन जितना समय उससे आप उसका स्मरण करोगे, मान लो कि आपके उसमें कोई किसी द्वेष कर गए, उससे उससे ज्यादा स्मरण करोगे आप, उसके ज्यादा चिंता रहती है। शिशुपाल ये जो कृष्ण का जो निंदा है वो कैसे मिट गया, भगवान का पूर्ण तरीके से कृष्ण का स्मरण करने की वजह से, उनमें तल्लीनता की वजह से, तल्लीनता से उत्पन्न हुआ, कृष्ण की स्मरण में तल्लीनता से उत्पन्न हुआ जो पुण्य है या सुकृति है, तो वो सुकृति की वजह से ये कृष्ण का निंदा जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो खत्म हो गया, उस वजह से शिशुपाल वो उन्होंने मुक्ति प्राप्त किया। मुक्ति मतलब सौज्य मुक्ति, शरीर मुक्ति सौज्य प्राप्त हुए। वैसे शरीर साहुज तो प्राप्त किए लेकिन साथ में कुछ समय के लिए कृष्ण के शरीर में रहे, वापस जय विजय बन गए। सार रूप में कृष्ण का जो डांट है या उनकी निंदा है वो दो प्रकार का, एक है प्रेमवश, दूसरा है द्वेषवश। और द्वेषवश जो डांट है या निंदा है वो दो प्रकार का, एक तल्लीनता से, वो बिना तल्लीनता से, वैसी कुछ वेण ने जो किया था, जैसे लोग कहते हैं कृष्ण को निंदा करते हैं, कृष्ण की तल्लीनता नहीं है, वैसे निंदा करते हैं। तो ये तीन प्रकार का है, दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी में दो प्रकार है। तो इधर अवागुरत अर्थ है कि यशोदा में थोड़ा कम धीरे धीरे से उन्होंने कृष्ण को डांटा, तो कृष्ण श्लोक में भयभीति उद्भवित हुए, भयभीति नहीं हुए लेकिन यशोदा उनको डांटी भी। सार रूप में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते शुरुआत में है, ये जो यशोदा माई और कृष्ण के बीच में जो प्रेम पूर्वक व्यवहार है उससे पता लगता है कि यशोदा माई का स्थान क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, कृष्ण का जो पौगंड लीला का मुख्य उद्देश्य सार रूप में क्या है, यशोदा माई की भक्ति का महिमा को स्थापना करने मुख्य उद्देश्य है। पूरा पौगंड लीला कृष्ण के जो पहले के जो जो 5 साल तक पौगंड बोलते हैं उसको क्या कौमार लीला है, पौगंड लीला तक जितने भी ये जो लीलाएं हैं 5 साल की उम्र तक, पूरा केवल यशोदा माई को समर्पित किए हैं। यशोदा माई की महिमा को वर्णन करने वाली लीला है। एक जगह आचार्य कहते हैं कि यशोदा माई की भक्ति इतना महान है तो क्या वर्णन कर सकते हैं हम, दूर से उनको केवल प्रणाम कर सकते हैं बस, यू ओनली पे ओबिशन सिस्टम, हेलो उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी थोड़ा सा इस श्लोक की जो लीला है जो प्रसंग है वो चर्चा करें। यशोदा मैंने कृष्ण को पकड़ लिया पिछले श्लोक में, उसका तत्व का निरूपण कल की क्लास में सुना कि इस प्रकार बड़े बड़े योगी लोग कृष्ण को पकड़ नहीं सकते, लेकिन वैसे कृष्ण को यशोदा मैंने पकड़ लिया। वैसे कृष्ण को कैसे पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता है। कालयवन कृष्ण को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन उनको ऐसा लगा कि बस हाथ में आ ही गया, लेकिन कृष्ण और भागते गए। कृष्ण को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास किए थे, जैसे यशोदा ने प्रयास किया उधर कालयवन ने प्रयास किया था। कालयवन में कृष्ण जो है उनसे भी डर के भाग रहे थे, लेकिन अस्तित्व में देखा जाए वो थोड़ा मजा ले रहे थे, चलो मुझे पकड़ो, पकड़ने का प्रयास करो। इधर भी यशोदा माई बोला पकड़ने का प्रयास करो, यशोदा ने पकड़ लिया लेकिन कालयवन पकड़ नहीं पाया कृष्ण को। लेकिन उधर वर्णन है कालयवन कृष्ण को पकड़ने जब जाते हैं तो उस समय कालयवन जो है उनको ऐसा लगा बस पकड़ में आ गया, लेकिन नहीं आया। आचार्यगण कहते हैं जो भौतिकवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, अन्य जो होते हैं अभक्त होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें बस कृष्ण को पकड़ लिया, हम कृष्ण को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन जैसे खोल के देखते कुछ नहीं रहता है, कृष्ण के हाथ में फिसल जाते हैं। लेकिन इधर यशोदा माई ने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण श्लोक की बहुत महत्वपूर्ण बात है, यशोदा माई का सुंदरता का वर्णन है, किस प्रकार कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही है। उधर आचार्यगण कहते हैं जो व्यक्ति यशोदा माई का स्मरण करता है, कृष्ण के पीछे पीछे भागते हुए उनका बाल गिर रहे हैं, उनके जो मोटी कमर है, उनके स्तनों का ये पूरा जो वर्णन है यशोदा माई का, ये अगर कोई व्यक्ति स्मरण करता है कृष्ण की वात्सल्य प्रेम में रस में डूब के यशोदा माई किस प्रकार भाग रही है, उनको यशोदा माई जैसी भक्ति प्राप्त होती है। ये विशेष अभी कृष्ण जागे, यशोदा माई कृष्ण को पकड़ लिया। रामृष्टमत्यंत तदुत्तर गोप्या दामोदराष्ट्र पहला श्लोक हो गया, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम असत्कुंडलम गोकुले भाजमानम यशोद भी अवलुका धावमानम करमृष्टमत्यंत तदुत्य गोप्या। लीला विशेष को वर्णन करते हुए श्री कृष्णनाथन गोस्वामी अपने दिग्दर्शन टीका में कहते हैं कि कृष्ण के पीठ को पकड़ लिया, ऐसे आगे आगे बच्चा भाग रहा है तो ईश्वर ने क्या कि जैसे पकड़ लिया तो कृष्ण ने क्या करना शुरू किया, रुदंतम मुहुर् नेत्रम युग्मम रजंतम। ये श्लोक शुरू होता है दामोदराष्टकम में, दामोदराष्टकम ये जो श्लोक है वो श्लोक का वर्णन इधर हो रहा है। ऐसे कृतागतम तम रुदंतमक्षिणी रुदंतमक्षिणी, तो जैसे कृष्ण पकड़ में आ गए, कृतागतम कृतागति दाम तावत, आगे मतलब कुछ गलत कार्य पाप कार्य मतलब किया तो कृष्ण मान लिया। जैसे कोई बच्चा जो है मां पकड़ने के बाद कोई हटी बच्चा रहता है ना, मैंने नहीं किया, मैं कुछ गलती नहीं किया, बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन कृष्ण के मन में भी आया आर्ग्यूमेंट करूं, लेकिन सोचा कि डंडा को देख के डर गए, अभी ज्यादा कुछ करूंगा बोलूंगा तो मार पड़ने वाली है, इससे पहले सच बोल दो लेकिन अगर डंडा नहीं दिखाते ना तो बच्चा जो है और हटी हो जाता है, मैंने नहीं किया, क्या तुम क्या सोचते हो, मैंने गलत किया कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आर्ग्यूमेंट करता है। तो ये आर्ग्यूमेंट को बंद करना है, अगर सच में निकालना है तो डंडा जरूरी है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा बच्चों को डंडा दिखाना जरूरी है, डंडा नहीं दिखाएंगे वो सर के ऊपर चढ़ जाएंगे। दोनों का स्वभाव है, बच्चों का और स्त्रियों का, जब तक डंडा नहीं दिखाएंगे तब तक शांत नहीं रहेंगे, नहीं तो सर के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो कृतागति इधर कृष्ण ऐसे उनके मन में था, सब बच्चा बच्चे के मन में रहता है गलती को स्वीकार करना ये लास्ट चीज है, वो तो करेंगे नहीं। जैसे आप मान लो तुमने गलत किया, कोई बच्चा जो है वो स्वीकार ही गया, बोलेगा नहीं मैंने नहीं गलत किया, मैं कुछ भी नहीं किया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं, वैसे जब तक डंडा नहीं दिखा जाए तब तक सच नहीं निकलती बाहर। ये दोनों का स्वभाव है, अच्छा और दोनों का स्वभाव है। तो ये जो है अभी स्वीकार कर लिया यशोदा मैं कि प्रेम से स्वीकार नहीं किया और डंडा देख के स्वीकार किया, डंडा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यशोदा मैं जो डंडा है ना हाथ में जो छड़ी है उसको न देखा, अभी पढ़ने वाली है, चलो पहले से बोल दो कबूल करो। अभी ऐसे कृष्ण वन में आया, मान लो कबूल किया तो फिर पढ़ने वाला डंडा। उन्होंने क्या किया, हम रुदंतमक्षिणी तुरंत रोना शुरू किया। ऐसे रोना नहीं आ रहा था उनको, एक आचार्य कहते हैं उनको रोना नहीं आ रहा था। अभी ये डंडा का जो मार खाने से कैसे बचे, वो बचने के लिए थोड़ा सा जो जिसमें जिसमें मार खाने वाले हैं जिसे जो क्रोधित है वो क्रोध को शांत करने के लिए वो यार एक इलाज है, वो क्या है, उनके अंदर दया उत्पन्न करा। और दया कैसे उत्पन्न होगी, जब दीन होगा जब रोएगा तभी दया उत्पन्न होगी। बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनको ऐसे मत सोचिए कि बुद्धू होते हैं, आपके उनका जो दिमाग जो है 100 गुना ज्यादा आगे सोचते हैं, 100 टाइम्स मोर देन यू। उनको मालूम है आपका इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अभी कृष्ण को मालूम है, ठीक है, कृष्ण जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, दिव्य है, वो ऐसा एक रोल कर रहे हैं जैसे कि यशोदा माई का इमोशंस को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। यशोदा माई ऐसे बहुत क्रोध में है। अभी कृष्ण क्या कह, मैं कुछ हाथ चलाऊंगा अभी, तो रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया सिद्ध में, जब रोने से पहले की अवस्था होता है ना शांक नेत्रम, पूरा आंखों में आंसू भरा हुआ है, अभी बाहर नहीं आ रहा है। अभी कितना बाहर आएगा, आर्टिफिशियल रोएगा तो इतना पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी आंखों में जैसे पानी भर गया ना, तुरंत उन्होंने दोनों हाथों से दोनों आंखों को मसलना शुरू किया। इधर तो एक हाथ से किए है, क्योंकि यशोदा मैंने क्या किया था, एक हाथ से उनका राइट हैंड, कृष्ण का जो राइट हैंड पकड़ लिया था, उनका राइट हैंड को दाहिने हाथ ना, दाहिने हाथ को पकड़ लिया था। तो एक हाथ से रोना शुरू किया, यशोदा मैंने देखा रूप को, कृष्ण का पूरा चेहरे को देखी, तो उस चेहरे में आंखों में तो आंसू भरा हुआ है। कृष्ण सोचा कि यशोदा मैं तो मैं दिखाऊं कितना आंसू भरा हुआ है, तो आंसू तो बाहर नहीं आ रहा था, इसे जबरदस्ती निकाल रहे थे आंसू को, देखो मैं कितना रो रहा हूं। और एक आचार्य कहते हैं कृष्ण की आंखों में आंसू आया था, लेकिन साथ साथ में आंसू के साथ उनको क्रोध भी था। एक तो यशोदा मैं के हृदय में डर पैदा, दया पैदा करने के लिए रो रहे थे, और साथ साथ में उनके उनके मन में क्रोध भी था। तो एक तो मां से मां का दया प्राप्त करना है, और उसी मां के साथ उनका क्रोध भी, अभी शांत नहीं हुआ। अगर शांत हो जाता तो दो यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने का संकल्प नहीं करते। अभी भी कृष्ण के मन में क्रोध है, क्रोध भी है डर भी है, क्रोध भी और डर भी है, और साथ साथ बुद्धि भी चल रहा है। अभी मैं क्रोध को प्रकट करूंगा तो और बिगड़ने वाला मामला, अभी दया को उत्पन्न करना, इससे रोना भी है। तीन भावना एक साथ में है, एक है क्रोध, और क्रोध को शांत करने के लिए डर भी है, मार खाने का डर भी है, इससे क्रोध थोड़ा छुप गया। और मार खाने का डर से बचने के लिए कृष्ण क्या किया, दया को उत्पन्न करने के लिए यशोदा मैया के हृदय में रोना शुरू किया। इसलिए ये जो चारों भावना है, लेकिन अपना मूल मूल भावना क्या थी, मूल भाव क्या था, कृष्ण का क्रोध था। कभी कोई व्यक्ति जो है दुख में रोता है, लेकिन क्रोध में रोना जो है ये बच्चा और स्त्री का विशेषता है, क्योंकि ये आखिरी हथियार है, इन दोनों का आखिरी हथियार हथियार व्यक्ति तभी यूज करता है, जब इस्तेमाल करता है जब क्रोध हो, है कि नहीं। अभी सारे हथियार जब समाप्त हो जाते हैं, अभी आखिरी हथियार निकालेंगे, वो है आंसू। लेकिन ये हथियार ऐसा है उसका कोई जवाब ही नहीं होता है। बहुत सारे प्रकार के अस्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र है तो उसका भी कुछ ब्रह्मास्त्र के साथ ये किया जा सकता है, वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। वरुणास्त्र है तो अग्नियास्त्र है, गरुड़ास्त्र है तो नागास्त्र है, अभी आंसू आस्त्र है तो कोई जवाब नहीं है, अभी शांत होना ही पड़ेगा। चाहे मां बच्चे के सामने, पुरुष स्त्री के सामने जब आंसू गिरते हैं तो समझ लेना हाथ उठा दो, हैंडसम, कुछ नहीं, कुछ बात ही मत करो। सबसे पावरफुल अस्त्र है कृष्ण, अभी वो अस्त्र छोड़ूंगा, अभी इसके सामने यशोदा में शांत होना ही है। तो जैसे कृष्ण रोना शुरू किया तो डाकों से आंसू देखी यशोदा भाई बिल्कुल शांत है, मार पड़ने ही वाला था। जैसे भाई मार पड़ने ही वाला था यशोदा भाई क्या क्या छड़ी को छोड़ दिया। चलो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बच्चे को इतना नहीं करना चाहिए, सब मातृत्व वास्तव लिया है, लेकिन फिर भी जैसे आप ये अभी तुमने किया ना कुछ तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, मैं तुम्हारा हाथ पैर बांध के रख दूंगी। यशोदा मैंने इनकी डांटना शुरू की, डांट भी कैसा था, बड़े प्रेम से था। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि थोड़ी यशोदा, यशोदा ने किस प्रकार डांटी, मैं तुम्हारा हाथ पैर बांधूंगी, बांधूंगी वापस तुम इस प्रकार का नखरा नहीं करोगे। बाद में है इतना हद तक कि तुम्हारा पनिशमेंट क्या है, हाथ पैर बांधने से क्या होगा, मैं कृष्ण जो चोरी नहीं कर पाएगा, ये पनिशमेंट भी है तुम्हारा, ऐसा नहीं कि मैं सबको छोड़ दिया दया के माफ कर दिया, नहीं माफ किया है, पनिशमेंट क्या है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा सकती। अभी यशोदा ने इस प्रकार उन्होंने डांटना शुरू किया, इसलिए शब्द इस श्लोक में लिखा हुआ है अवागुरत। अवागुरत मतलब बहुत नम्रता से, मतलब नम्रता नहीं बहुत हल्के भावना से, जस्ट वेरी माइल्डली चेस्टाइजिंग। कभी कभी माता पिता का डांट रहता है, क्योंकि ये जो डांट है क्रोध में नहीं रहता है, तो वात्सल्य प्रेम वश रहता है, तो उस प्रेम में दया की भावना जुड़ जाता है, वो डांट भी रहता है लेकिन अंदर अंदर मुस्कुराते हंसते भी है। माँ बच्चे जब डांटती है बच्चा एकदम भयभीत हो जाता है, डर जाता है, तो ये डर को देख के भय को देख के क्या मन में, माँ के मन में इच्छा आता है, क्या तुम सोचते हो तू सच में मारने वाली हो, क्या मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने गड़बड़ किया ना, इससे कुछ करना पड़ेगा। तो ये वात्सल्य का जो रस है इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, इसलिए सत्यवृत मुनि कहते हैं निमंजंतम आनंद कुंडे निमंजंतम, आनंद का सागर में कृष्ण सारे ब्रजवासियों को गोलवासियों को उन्होंने डुबा दिया। इस प्रकार यशोदा मई ने कृष्ण का विशुद्ध वात्सल रस का पान किया और कृष्ण ने यशोदा मई का विशुद्ध वात्सल रस को उन्होंने कृष्ण भी पान किया और कराया। कृष्ण एक ही काम है, रसों का पान कराना और रस को पान करना, ये सारी लीलाओं में कृष्ण ही है। ऐसे कोई व्यक्ति कहे कृष्ण जो है नाटक कर रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं, ये सारे प्रकार की भावनाओं को अनुभव करने का नाटक मात्र कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अनुभव कर रहे हैं, ही इज एक्सपीरियंसिंग फियर। ऐसा नहीं करना चाहिए कृष्ण ने डरने का भावना या अभिनय किया या उन्होंने ड्रामा किया, नहीं ही वाज एक्सपीरियंसिंग इट। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, आध्यात्मिक जो रस है, दिव्य स्तर के जो रस है, वो कृष्ण अनुभव करते हैं, इसलिए उनको रसो वैसा कहा गया है, अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्णा। केवल एक ही कार्य है, रसों का आस्वादन करना और जो भी उनके रसों के आस्वादन में भाग लेता है उनको आस्वादन कराना। श्रीमद् भागवतम जो उससे भरा हुआ है, उनको रसमालयम कहा गया है। इधर बहुत आश्चर्य की बात यह है, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ही पिछले श्लोक में कृष्ण पकड़े गए, कोई सोच सके पकड़े गए, ठीक है पकड़े गए, छूट जाएंगे बाद में, नहीं केवल पकड़े नहीं गए, वो डर गए छड़ी को देख। आप कहोगे कि सारा जगत जो है उनसे डर के मारे कार्य करता है, भयात वाति वात हो, ये भागवत में कहा गया कि हवा जो है कृष्ण की भय से बहत जलता है और पानी जो है कृष्ण की भय से टहलता है, कृष्ण की भय से बारिश होता है, कृष्ण के भय से सब लोग कार्य करते हैं, सारे देवता कांप जाते हैं कृष्ण के भय से, लेकिन वही कृष्ण भयभीत है। समाम विमोयति भिर्यप्य दिभेति, स्वयं भय जिनसे भयभीत हो जाता है वैसे कृष्ण अभी भयभीत है, जिनके नाम सुनने मात्र से भय स्वयं भाग जाती है। नाम विवशो गुणं तथा सद्य चेत यद विभेदिम स्वयं भयम, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि यमराज ने कहा आप जहां भगवान का नाम का संकीर्तन होता है, जो भी भक्त नाम लेता भगवान का कृष्ण का नाम लेता है उनको पकड़ने मत जाओ, ऐसा नहीं कहा उनके पास ही मत जाओ। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनके पास जाने की उनको पकड़ने की बात छोड़ो, उनके पास भी नहीं जा सकता कोई व्यक्ति, ये भगवान के नाम की शक्ति है। और स्वयं भगवान जो जिनका नाम ही इतना शक्तिशाली है वो स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे, लेकिन अभी वो यशोदा मई से भयभीत है। ये जो है दार्शनिक लोगों के जो बहुत दार्शनिक है उनके पले नहीं पड़ता है। क्या बात कर रहे हो, एक जगह कहते हो आपके भगवान शक्तिशाली है, सबको डराते हैं, उनके डर से सब कुछ चलता है, दूसरी जगह कहते हो कि यशोदा से भयभीत है। ये समझना बहुत मुश्किल है उनको, इट्स वेरी डिफिकल्ट। असल में कृष्ण भगवान इसलिए है क्योंकि उनके अंदर जो परस्पर विरोधात्मक भावना एक ही समय उपस्थित रह सकता है, एक ही समय उपस्थित रहने पर भी वो उससे प्रभावित नहीं है, ये इसलिए उनको भगवान कहा गया। नहीं तो कोई भी भगवान बन जाते, कोई शक्तिशाली हो जाता है भगवान बन जाता है, कोई शक्तिशाली होने पर भी वो भयभीत है। इसके श्रीपाद भक्तिनोद ठाकुर, श्री भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम। विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम का अर्थ क्या है? विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ विरुद्ध भावनाएं, विरुद्ध भावनाएं जिनके अंदर समा जाते हैं, जिनके अंदर एक ही समय उपस्थित रह सकता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। न चित्रम, उसमें कोई आश्चर्य आश्चर्य की बात नहीं है, ये स्वभाव है कृष्ण का। इसके अंदर आश्चर्य की बात नहीं, न चित्रम का क्या है, उसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं, इसका उनका स्वभाव है। ये भगवत तत्व का स्वभाव है जहां दोनों विरोधास्पद बातें समा जाते हैं। समा जाना का अर्थ क्या है? कृष्णा इज पीसफुल एट द सेम टाइम एंग्री, शांतागारम। नरसिंह लाला ने क्या किया? उग्र रूप दिखा, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? ईशोपनिषद में कहा गया तद जेजति तद नेजति, नेजति वो चलते हैं, तुरंत कहते नेजति वो चलते नहीं है। अरे चलते भी नहीं, चलते कैसे भी? तब दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर होने पर भी बहुत नजदीक है। तद्वांतिक है, तदंतस्य सर्वस्य, उसके अंदर भी है तो सर्वस्य से बाहर, था बाहर भी हो, कैसे हो सकता है? अगर आप घर के अंदर है तो बाहर नहीं हो, तो बाहर है तो घर के अंदर नहीं हो, लेकिन कृष्ण दोनों है वो कैसे है? अगर आप शांत हो तो क्रोध नहीं है, अगर क्रोधित हो तो शांत नहीं हो, लेकिन कृष्ण दोनों साथ में है। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज वाई इज गॉड। तो वेदांत सूत्रों में भी इसका विषय में चर्चा किया गया है। इसको अक्षर ठाकुर बहुत सरल भाषा में कहते कि विरुद्ध सामान्यम तस्मिन् न चित्रम। इसकी व्याख्या करते व्यासदेव कम से कम 20 सूत्रों को रचना करते हैं इस बात को पुष्ट करने के लिए, और उसके ऊपर व्याख्या करते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं कि दिस इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण का ये निजी स्वरूप है, निजी स्वरूप ये है। तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए कृष्ण का निजी स्वरूप है। भले ही शास्त्रों में अनेकों अनेकों बातें कहा गया है कृष्ण के विषय में, वो महान है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें कहा गया है। हो सकता है कोई जीव इन गुणों को स्वीकार कर भी ले, प्राप्त कर ले, लेकिन ये स्वभाव जो है वो जीव के अंदर कभी नहीं आ सकता है, केवल भगवान में स्वाभाविक तरीके से रहता है। वो क्या है? वो विरुद्ध भावना एक ही साथ समा जाना। कोई कृष्ण सारे जगत को पोषण करते हैं, आत्म काम है, लेकिन भूख लगता है। कभी सारा जगत तो उनकी वजह से उनकी दृष्टि चल रहा है, लेकिन वो कभी दिख जाता है उनको। तो ऐसे इतने सारे विद्युत भावनाएं दिखाई पड़ रहा है इधर। सबसे पहला आपने देखा कृष्ण भयभीत है, ही इज अफ्रेड ऑफ यशोदा। तो ये भय को अनुभव कर रहे, ऐसा कि भय का नाटक कर रहे हैं। दूसरा, अभी कृष्ण हो गया यशोदा मेरे डांटा, अभी कृष्ण को इतना अच्छा लग रहा था, कृष्ण कितना सुख लगता है, क्यों सुख लगा मालूम है? जब माँ बच्चे को डांटती है ना, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मालूम है? कम से कम मार तो नहीं मिला ना, है कि नहीं? तो ये इस जगत में हम देखते हैं, बच्चे जब माता पिता से डांट खाते हैं ना, बाद में डांट खाने का उनको मुंह दिखती है, बड़े हंसते रहते, मजा अभी मजक बच गए, आज बच गए। मुझे याद है बचपन में प्राय रोज मारा करती थी मुझे माँ, तो एक दिन खाली डांट खाता था ना, बड़ा मजा आता था। आज आज कम से कम मार नहीं पड़ी। कृष्ण को अंदर इधर मजा भी आ रहा था, छड़ी जैसे उन्होंने जैसा ने फेंक दिया, अभी बस सक्सेस हो गया हमारा ड्रामा, बहुत सक्सेस, मजा आता है। और वो डांट भी कैसा था, वो माँ का डांट शुरुआत में बहुत जोर से रहता है एकदम, ये शुरुआत, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, शांत हो जाता है। बाद में बच्चा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, माँ उनको आलिंगन करती है, बेटा चलो जब क्या खाओगे, शुरू हो जाता है वापस। इसलिए बच्चे इतने शैतान होते हैं, इतने होते हैं कि इस जगत के एक तुच्छ जो मल मूत्र से बना हुआ शरीर वाला बच्चा जो भी वो उसका कार्य भी ये जो माता पिता को इतना आनंदमय मिलता है। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान स्वयं इस प्रकार की लीलाओं से यशोदा माई को कितना आनंद मिलता होगा, ठीक है? जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को पालने में लालन पालन करने में जो सुख मिलता है उसको परम मान के चलते हैं, क्योंकि अंततः वो दुख देने वाली हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कितना पीछे पड़ते हैं, कितना दुख को अनुभव करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वही जो सुख भगवान स्वयं यशोदा माई को दे रहे हैं ये यशोदा माई का परम सौभाग्य है, महान सौभाग्य है कि इस प्रकार कृष्ण का डांट खा के अंदर ही अंदर बहुत मजा ले, आज मैं डांट खा के मेरा चल गया, मार नहीं खाया करके वो बहुत सुखी है। ये आज का ये जो श्लोक का थोड़ा सा वर्णन है, खास करके इसमें भगवान की आंखों जो मल रहे थे इसमें तो एक हाथ से मल रहे थे, तो क्या हुआ उनके जो काजल लगाए थे भगवान रोज काजल लगाते हैं, में काजल लगाती है, तो उनके कृष्ण के जो काजल से जो आंसू से मिलके पूरा चेहरे में काला काला हो गया था काजल। काजल बहुत अच्छी चीज है, शांत वो ठंडक पहुंचाती है। आजकल के बच्चों को काजल नहीं लगाते, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, सब चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें जो है बच्चों को नहीं मिलती आजकल, अच्छे अच्छे खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, पहनने को मिलता, तो बच्चा जैसे 3-4 महीना 6 महीने का भी होता है उसको जीन्स पैंट पहना देते हैं, टी शर्ट पहना देते हैं, टोपी भी पहनाते हैं उसको, और रो रहा है बच्चा, दादा भी तो बोलते हैं वो अच्छा है क्या है सब चीजें, तो उसको इतना परेशान करो रुलाओ और बाद में आनंद लो, ये थोड़ी ना सही हो। कृष्ण का ये जो सुंदर चेहरा जो काजल सिंह चेहरे को देखे यशोदा माई के अंदर ये पूरा हृदय पिघल गया, इसलिए कहा गया है माया विह्वल ईक्षण हस्ते घृत्वा हस्ते घृत्वा यशोदा माई ने एक हाथ से उनको पकड़ लिया, घृत्वा विष्यंती वागुरत विष्यंती वागुरत, तो हल्की भाषा में कपूर से द्वेष से नहीं डांटा, बड़े प्रेम से उन्होंने डांटा जो कृष्ण को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आगे हमको लीला श्लोक में सुनेंगे। आज एक विशेष दिन है, श्रीपाद रामानुजाचार्य का आज तिरुभाव दिवस है, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के विषय में तत्काल जब भी उनका आविर्भाव है तिरुभाव होता है, प्राय आपने बहुत सारी लीलाओं का आपने श्रवण किया होगा, आज हो सकता है जितना जो लीलाएं जो आपने साल कभी श्रवण किए होंगे नहीं किए होंगे उन लीलाओं को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य का अनेकों प्रणाम मंत्र है, उनमें से एक प्रणाम मंत्र बड़ा सुंदर प्रणाम मंत्र है, उसको उच्चारण करके थोड़ा रामानुजाचार्य के विषय में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तितराणि त्रिनायमेने अस्मद्गुरोर् भगवतस्तदयेकसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रणाम मंत्र है। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, जो मतलब जो जो आचार्य है रामानुजाचार्य, नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, नित्यम नित्य अच्युत पदाम्बुज अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के रुक्म, उनका चरण धूलि, भगवान का चरण में धूलि को रुक्म युग्म रुक्म कहा गया, तो भगवान की चरण कमलों की धूलि है, यानी रामानुजाचार्य कृष्ण के चरण कमलों में नित्य धूल के रूप में रहते हैं। रुक्म शब्द का और एक भी अर्थ है, सात्विक अर्थ है, रुक्म का अर्थ है केवल धूल और साथ साथ में उनसे उत्पन्न हुआ प्रभा ज्योति है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है बलराम, बलराम की विस्तार है संकर्षण, संकर्षण के विस्तार है अनंत देव, अनंत देव के मुखारविंद से एक ज्योति प्रकाशित होती है जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, मुखारविंद का ज्योति है, और ब्रह्म देव या अनंत देव के मुख से क्या प्रकट होता है, उनके भगवान की गुणगान प्रकट होता है। अनंत देव भगवान का नित्य रूप से गुणगान कर रहे हैं, तो गुणगान तभी कर पाएंगे जब उनके अंदर शक्ति हो। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वर्णन करते हैं शक्तावेश अवतार के विषय में, कहते हैं कहा दो प्रकार के शक्तावेश अवतार है, एक है साक्षात सीधा, दूसरा जो है गौण अप्रत्यक्ष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो साक्षात शक्तावेश अवतार जो है अनंत और शेष है, और इनडायरेक्ट जो है वो है जैसे कि ब्रह्मा जी हुए और नारद जी, व्यास, चार कुमार। नारद जी जो है भक्ति शक्ति का शक्तावेश अवतार है, चार कुमार ज्ञान शक्ति का शक्तावेश अवतार, तो ऐसे साहित्य शक्ति का शक्तावेश अवतार है व्यासदेव, भूपालन शक्ति का शक्तावेश अवतार है पितु महाराज। तो ऐसे अनेकों अनेकों शक्ति आवश्यकता है जिसमें एक जीव के अंतर्गत भगवान ने एक विशेष शक्ति प्रदान किया एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, उनको एक गौण शक्तावेश अवतार कहा जाता है। लेकिन साक्षात शक्तावेश अवतार कोई और नहीं है, वो अनंत है। अनंत कोई भगवान ही है, भगवान के विस्तार है, कृष्ण के विस्तार है, लेकिन उनके अंदर एक विशेष शक्ति को उन्होंने प्रकाशित किया, यानी वो भगवान के गुणगान करने की शक्ति। उसके द्वारा रामानुजाचार्य के उसके द्वारा आवेशित किए गए हैं। इज एम्पावर्ड इनकार्नेशन ऑफ द ग्लोरिफाइंग पोटेंसी ऑफ अनंत, अनंत देव के जो गुणगान करने की शक्ति के द्वारा आवेशित अवतार है। कभी कभी रामानुजाचार्य को लक्ष्मण के अवतार कहते हैं, ऐसे तो सरल भाषा में इस प्रकार कहा गया कि लक्ष्मण कोई और नहीं, बलराम जी है, बलराम जी वो कोई और नहीं है, वो संकर्षण है वो कोई और नहीं, अनंतदेव अनंतदेव क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इतना लोग इतना टेक्निकली बात को नहीं जानते, इसलिए लक्ष्मण के अवतार करके संबोधित करते हैं, लेकिन वो है कोई और नहीं है, वो रामानुजाचार्य एक जीव तत्व है, वो विश्व तत्व नहीं है, लेकिन उनके अंदर इसका समावेश है। अनंत देव का अंदर जो भगवान को गुणगान शक्ति करने की जो शक्ति जो है उस वो प्राप्त है, तो इसलिए उनको यो नित्यमच्युत पदाम मुझे युग्म रुक्म व्यामोहत स्थितराणि त्रणाय मेने। तो जो व्यक्ति रामानुजाचार्य का शरण लेते हैं वो सारा प्रकार की विमोह व्यामोह, तो स्वयं भी तीनों गुणों से परे है, विमोह से मोह से परे हैं, और जो भी उनका शरण लेते हैं वो भी मोह से परे हो जाएंगे। इसलिए मैं उन रामानुजाचार्य के सामने तृण के बराबर हूं, तृणाय मेने अस्मद गुरो, इसलिए मैंने उनको हम हमारे गुरु हैं, वो हमने उनको गुरु के रूप में चुना है, ये हमारे गुरु हैं। अस्मद गुरोर भगवतस्य दयैक सिंधो, भगवान श्री कृष्ण के जो दया प्राप्त करके एक सागर के रूप में पूरा विशाल रूप में उन्होंने फैलाया भगवान की जो दया को, भगवतस्य दयैक सिंधो रामानुज चरण शरणम विपद्ये, रामानुजाचार्य की चरण कमलों में मैं शरण लेता हूं, ये उनकी प्रणाम मंत्र का अर्थ है। इसके अंदर हमने रामानुजाचार्य का ये अनंत देव के शक्तियाविश अवतार के विषय में चर्चा किया, उसको प्रकाशित करने वाली सुंदर लीला है। अभी भी वो जगह है मैसूर के पास में, एक जगह है मैसूर जाएंगे तो 10-20 किलोमीटर दूर में एक जगह है, समय उस राष्ट्र को एक जैन राजा पालन करता था, जैन था, और बहुत सारे जैन मुनिगण उनको वाहवा करते थे, और राजा के पास और कोई वैष्णव नहीं था, तो इससे जैन धर्म को पालन करते थे। रामानुजाचार्य जब पहुंचे तो उधर के जैन जितने मुनि है साधु है उन सबको मालूम पड़ा रामानुजाचार्य आ रहे हैं, अभी हमारे राजा को मिलेंगे और राजा को प्रभावित करेंगे, हमारा सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत प्रयास किया रामानुजाचार्य को आने नहीं देने के, लेकिन राजा तो राजा है, तो जो भी साधु आते हैं उनको स्वागत करना उनका धर्म बनता है, तो उन्होंने स्वागत किया। जब स्वागत किया तो रामानुजाचार्य ने उनको वैष्णव सिद्धांत को समझाया बताया। राजा ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो पालन करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नियम है राज्य में जब तक आप हमारे स्थान में रहने वाले जो साधु विद्वान है उनको परास्त नहीं करोगे तब तक मैं आपका जो वैष्णव सिद्धांत स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जैसे ब्राह्मण बोलेंगे मेरा काम है, लेकिन कौन सही है आप ही निर्णय करो। तब राजा ने कहा सारे जैन साधुओं से कि जो रामानुजाचार्य आए हैं उनसे शास्त्रार्थ करो, जो जीतेंगे मैं उसका मैं क्या करूँ, मुझे तो इतना दिमाग नहीं है कौन सही है कौन गलत है, नहीं कर सकता हूँ, आप करो। लेकिन जैन मुनियों को मालूम था रामानुजाचार्य की शक्ति, ये इतने विद्वान हैं हमको तो चुटकी में परास्त कर देंगे। जैन साधु ने कहा नहीं 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 हम नहीं करने वाले शास्त्रार्थ, मैंने कहा करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे लेकिन एक शर्त पर, शर्त यह है कि हम हजार लोग इधर हजारों एक ही समय अलग अलग प्रश्न पूछेंगे और रामानुजाचार्य को एक ही समय सबको अलग अलग प्रश्नों का जवाब देना होगा, संभव है? एक तो सुनना, हजार प्रश्नों को एक साथ सुनना और समझना इसी ही प्रश्न पूछा था, और दूसरी बात अभी एक ही मुख है तो एक मुख से बोलेंगे तो एक ही प्रश्न एक ही समय होगा। जैन लोगों ने सोचा हमने उनको पकड़ में आ गया रामानुजाचार्य। तो जो कंडीशन होता है आर्ग्यूमेंट में उसको स्वीकार करना होता है, जो नहीं तो उधर ही परास्त हो जाता है। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है मैं मंजूर है आपका कंडीशन, लेकिन मेरा भी कंडीशन है तो मैं जवाब दूंगा लेकिन सबके सामने मैं बैठा नहीं रहूंगा, मेरे सामने एक बंद कमरा होगा अंदर सामने पर्दा होगा। ठीक है हमको आवाज से जवाब से मतलब है लेकिन सबको सुनाई पड़ना चाहिए। ठीक है तो एक कमरे में रामानुजाचार्य को बंद किया और पर्दा रखा और सामने हजार साधु बैठे, सब लोगों ने एक साथ में अलग अलग प्रश्न पूछे। थोड़ी देर की शांति रहेगी, दो मिनट की, अचानक सबके कान में अपने अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया। सब ऐसा हो रहा था और रामानुजाचार्य के एक शिष्य जो है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है देखो, पर्दा खोल के देखे अंदर जो उन्होंने देखा ढेर के बेहोश हो गए महानंद देवते। हजारों मुख है, हजारों मुखों में अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब मिल गया। ये इसी पर रामानुजाचार्य साक्षात अनंत देव के शक्ताविश अवतार है ये सिद्ध होता है। इसलिए आप गीता भाष्य का उनकी भाष्य का कोई भी लिपि को अगर आप पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि बस कृष्ण कथा या कृष्ण कथा का वर्णन जो है वो जैसे युद्ध में घोड़े की दौड़ होती ना, घोड़ा कैसे दौड़ता कोई नॉन स्टॉप कोई रुकना इधर उधर देखना नहीं रहता, ऐसे उनका जो प्रवचन है उनका जो व्याख्या है एक लोकाचार्य करके है बड़े आचार्य उन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य की जो वर्णन है या उनकी व्याख्या है गीता के ऊपर और श्री भाष्य के ऊपर वो एक संग्राम है। संग्राम में युद्ध किस प्रकार घोड़ा किस प्रकार भागता है कोई इधर उधर नहीं देखता, कोई संदेह नहीं रहता घोड़े के मन में मुझे क्या करना है, हाँ उनको ऐसा ध्यान दिया जाता है कि नहीं इधर उधर नहीं देखना सीधा जाके प्रहार करो, ठीक है ना, और इतना स्पॉन्टेनियस इतना स्मूथ रहता है ऐसा नहीं कि घोड़ा जो है थोड़ा सा ब्रेक लगा के इधर उधर चलता है, घोड़े के दौड़ बोलते अभी भी, ठीक है ना। हाँ इसको एक गीत भी है उसको अश्वधुति कहा जाता है, तो एक अलग अलग प्रकार के राग है उनमें से एक राग ऐसा है नॉन स्टॉप चलने वाला, उसी प्रकार उनका वर्णन रहता है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य का विशेष योगदान क्या रहा हमारी संप्रदाय के लिए, एक व्यक्ति ने बच्चनों ठाकुर के पास जाके पूछा कि रामानुजाचार्य का साथ हमारा क्या संबंध है, गौड़ी वैश्य का क्या संबंध है। तब श्री बच्चन ठाकुर ने कहा कि रामानुज संप्रदाय श्री चैतन्य प्रेमेर मंदिर भित्ति स्वरूप, इतने महाप्रभु ने जो प्रेम का मंदिर है रामानुज संप्रदाय के जो जो फाउंडेशन है भित्ति स्वरूप का अर्थ है नींव बुनियाद या फाउंडेशन बनाया, जैसे मंदिर का निर्माण होता है सबसे पहले हमने फाउंडेशन बनाया कि उसके बाद मंदिर होता है, ऐसे रामानुज सिद्धांत का फाउंडेशन के ऊपर उनका जो नींव है उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रेम का मंदिर निर्माण किया। यानी चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है प्रेम सिद्धांत है उसका आधार क्या है रामानुज संप्रदाय रामानुज सिद्धांत। रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है वो उसका सार क्या है, बट एसेंस ऑफ इट, एसेंस है वैष्णव की सेवा, तो रामानुजाचार्य के जो तिरुभाव दिवस के दिन पिछले साल मैंने रामानुजाचार्य का जो 72 इंस्ट्रक्शंस है उसको मैं पढ़ के आपको सुनाया था। अभी तो बुक मेरे सामने नहीं है लेकिन 60 रुपये हैं। पिछली बार अगर आपको याद होगा मुझे भी सुना होगा, ने कहा था कि वैष्णवों की सेवा के ऊपर कम से कम 72 में से 20 वैष्णवों की सेवा के ऊपर आधारित है। 20 इंस्ट्रक्शंस, कावेरी नदी बह रही है श्रीरंगम में और उनके जो अंबर उनके भाई है उनके गोद में बैठे हैं संन्यास दिए थे उस समय गोविंद, आज में उनका नाम पड़ा एम्बार मठ एम्बार, तो उनके गोद में लेटे हुए रामानुजाचार्य और सारे शिष्य उनके आजू बाजू में इर्द गिर्द है और उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देते देते 20 उपदेश बाकी सबको छोड़ के 20 उपदेश केवल वैष्णव सेवा के ऊपर आधारित है। और वो सब होने के बाद ने कहा कि हमको वैष्णव का कैसे जीना चाहिए, बताओ तो बहुत बड़ी चीज है, 4 रूप में कुछ बताइए। सबसे पहले ही कहा हमारे चैत्र ने कहा जो ये सोचता है कि मेरा गुरु का सेवा करूंगा लेकिन मेरे जो गुरु भाई है वैष्णव है उनकी सेवा नहीं करूंगा वो सबसे बड़ा अपराधी है। लोग क्या सोचते हैं गुरु को सेवा करेंगे, महान वैष्णव है तो उनका सेवा करेंगे। शास्त्र ने वही कहा ना महत्पाद रजोभिषेकम, महान लोगों की बड़े चढ़े भक्त होते हैं गुरु होते हैं सन्यासी होते हैं साधु होते संत का उनकी सेवा करना चाहिए, अंत वैष्णव तो क्या है वो भी मेरे जैसी ही है। क्या उसकी बड़ी बात है, मेरे जैसे नहीं मेरे से कम है वो लोग। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा वो सबसे बड़ा अपराधी है जो इस प्रकार सोचता है। गुरु का सेवा कैसे किया जाता है जब अन्य वैष्णवों का सेवा करोगे। मान लीजिए आप कोई आश्रम में कहीं है न्यू भक्त कहां है, उस भक्त का सेवा जो है वो आपके वास्तविक गुरु की सेवा है। लेकिन आप ढूंढते रहोगे कौन शुद्ध भक्त है उसका सेवा करता है जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो आपके सामने वैष्णव है उनका सेवा करना, आपके साथ जो वैष्णव है उनका सेवा करना वही आपकी गुरु की सेवा है। रामानुजाचार्य को मालूम था कि अभी वो अप्रकट होने के बाद ये होने वाला है, इस प्रकार का प्रदूषण आने वाला है उनकी समाज में। वो लोग सोचेंगे मेरे सामने जो है वैष्णव वो बराबर नहीं है, वो कोई और कहीं बाहर से कहीं आएगा वो श्रेष्ठ है वो अच्छा है उसका संगति करना चाहिए। रामानुजाचार्य ने बहुत पावरफुल पॉइंट कहा, इसलिए जो हमारे साथी जो वैष्णव होते हैं उनका सेवा करना ही हमारा गुरु का सेवा है शुद्ध भक्त का सेवा है। तो ये वैष्णव सिद्धांत का ये ब्राह्मण सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण बात है। रामानुजाचार्य का अन्य सिद्धांत अन्य योगदान ये है कि खैर मैं ये बात बोलना भूल गया। तो इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा था। श्रील प्रभुपाद जी जब अंत समय में भागवत का टीका कर रहे थे वर्णाश्रम के बारे में कहा, कहते कहते आखिरी शब्द था श्रील प्रभुपाद जी का प्लीज कोऑपरेट, क्या करो एक दूसरे को सहयोग दो। सहयोग देना मतलब क्या, एक दूसरे की सेवा करो। यानी जो श्री श्रील प्रभुपाद रामानुजाचार्य ने कहा था आखिरी में वही श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा। अभी जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम में प्रचार कर रहे थे कांचीपुरम में प्रचार कर रहे थे उस समय उनके राजा जो है बहुत शिव हो गया था, बहुत परेशान किया इतना हद तक कि रामानुजाचार्य से छुट्टी मांग रहा था कि आप छुट्टी दो कि मैं आप शैव बन गए, शिव ही भगवान है। लेकिन उनके साथ में रहने वाले जो शिष्य है उनके शिष्य है तो ने कहा कि आप चले जाओ चुपचाप चले जाओ, मैं आपका वस्त्र धारण करूंगा। गुरेश गुरस्त था, उन्होंने रामानुजाचार्य का वस्त्र पहन लिया, रामानुजाचार्य को सफेद वस्त्र दिया, चुपचाप किसी को पता नहीं लेना चाहिए चले जाना चाहिए। और कुरेश जाके और राजा से मिला तो राजा ने सोचा कि यही रामानुजाचार्य है। कुरेश ने स्वीकार नहीं किया, मैं नहीं लिखूंगा, उन्होंने कहा शिव भगवान है करके। तब राजा ने क्या किया, कुरेश को आंख निकाल दिया। देखिए कितना शरणागत है उस समय कुरेश रामानुजाचार्य के, तो रामानुजाचार्य कितने शरणागत थे, रामानुजाचार्य का आंख निकालने वाला था राजा, अभी कुरेश ने अपना सैक्रीफाइस कर दिया। अभी जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम से मैसूर की ओर आए, मैसूर के पास एक जगह है तिरुनारायणपुरम जिसका नाम है, जिसका नाम है मेलकोट। जैसे प्रभुपाद जी इतना प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए, लेकिन कोई, तो प्रभुपाद जी क्या किए, ईस्ट से वेस्ट गए, वैसे रामानुजाचार्य भी ईस्ट से वेस्ट गए। श्रीरंगम जो है वो पूर्वी ओर है, उसकी पश्चिम दिशा में मैसूर या तिरुनारायणपुरम मेलकोटे है। तो उधर मेलकोट में आके श्रीपाद रामानुजाचार्य किसके साथ मुलाकात हुआ, जंगली लोगों के साथ। ऐसे वो जंगली लोग आए, आदिवासी लोग आए, रामानुजाचार्य ने सबसे पहले उनको तिलक लगा दिया, और उधर बहुत सूखापन थी, लेकिन रामानुजाचार्य ने देखा नजदीक में मिट्टी बह रही है, फिर भी इधर सूखापन क्यों है। रामानुजाचार्य ने स्वयं अपने हाथों से मिट्टी खुदाई करके, मिट्टी अपने सर के ऊपर उठा के एक जगह डाल देने के, डालते डालते और अन्य लोग भी जो उनके साथ में थे और उधर के लोग जो सूखापन से बहुत पीड़ित थे, वो सब लोग भी मिट्टी डालने लगे। रामानुजाचार्य डाल रहे, मैं मिट्टी डाल देंगे। डालते डालते बहुत बड़ा दो पहाड़ के बीच में एक बड़ा डैम जैसा बन गया, तब वो नदी का पानी जाके अभी वो डैम जैसा रुका। अभी भी वो इलाके में अभी हरियाली हरियाली है। रामानुजाचार्य ने स्वयं अपने हाथों से डैम बनाया, एक बांध बनाया जिसके द्वारा पूरा पानी रुका हुआ, एक बड़ा सा डैम बना हुआ है, बहुत बड़ा तालाब जैसा बना हुआ है, भाई लोग बोटिंग के लिए जाते हैं। लेकिन 800 साल 900 साल हो गया, अभी 1000 साल होने वाला है, 2017 में रामानुजाचार्य का 1000 साल 1000 ईयर सेलिब्रेशन हर एक मंदिर में भव्य तरीके से होने वाला है 2017 में। आप कभी भी कोई समय नहीं, दक्षिण की ओर कभी जाइएगा, दक्षिण भारतीय मंदिर में कभी जाएंगे, आपको हर रोज कुछ ना कुछ फेस्टिवल मिलेगा रामानुजाचार्य के विषय में। तो ये रामानुजाचार्य का ये जो द्वारा बांधा हुआ डैम 1000 साल होने को आया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, 10 साल में टूट जाता है। कोई सीमेंट नहीं, कोई कॉन्क्रीट नहीं, कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये आचार्य। तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्या है, अब तो खाली श्रवण कीर्तन करेंगे, इधर तो कोई और करेगा। लेकिन रामानुजाचार्य अपने हाथों से एक डैम बनाया, उनसे सब लोग प्रभावित हो गए और सब लोगों को दीक्षा देके उन्होंने शिष्य बनाया, ही मेड डिसिपल्स। और वैसे लोग जिनका आ बोलो तो आ बोलना नहीं आता, वो बोल तो वो बोलना नहीं आता, वैसे लोगों को रामानुजाचार्य ने वैष्णव बनाया, विद्वान बनाया। रोज रामानुजाचार्य, ऐसा वर्णन आता है कि 6 घंटा उन शिष्यों के साथ बैठते थे, उनको वेदांत सिखाते थे। श्री भाष्य की रचना रामानुजाचार्य से शुरू किया, अनेकों अनेकों ग्रंथों को रचना रामानुजाचार्य 17 साल तक उसे निवास करते हुए किया। इसलिए रामानुजाचार्य कहते हैं श्री भाष्य पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना होता है तो कम से कम आप तिरुनारायणपुरम मेलकोट में आके रुको, अपना जीवन बिताओ, एक कुटिया डाल के रहो, और वो भी नहीं होता, कम से कम एक रात तो मेलकोट में रुको। श्री प्रभुपाद जी ने वही कहा, वही किया। प्रभुपाद जी कहां से कहां गए, ईस्ट से वेस्ट। उधर किन लोगों से मिले, वैसे लोगों से मिले रामानुजाचार्य, उनको क्या किया, प्रभुपाद ने तिलक लगा दिया और उनको दीक्षा दिया, उनके साथ बैठे। प्रभुपाद जी जैसे रामानुजाचार्य ग्रंथ को रचना किया, प्रभुपाद जी ने रचना किया, और जैसे करते करते प्रभुपाद जी ने रामानुजाचार्य से एक इंस्ट्रक्शन दिया, ने कहा कि खासकर गृहस्थों को कहा मायापुर में आके कुटिया डाल के रहो, शहर में रहकर प्रचार करो, नहीं तो मायापुर जाओ कुटिया डाल के रहो, या वृंदावन जाओ कुटिया डाल के रहो, बंगला नहीं कुटिया। उधर जाके आप बंगला बनाओगे, एसी लगाओगे, सब क्या, तो क्या फायदा, वृंदावन में बॉम्बे बना रहे हो, प्रचार के है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए सरल जीवन यापन करना चाहिए। वृंदावन में जाके या मायापुर जाके बड़ा बंगला बना के एसी रखे, चार पांच नौकर रखे, ये वृंदावन के प्रति अपराध है। प्रभुपाद जी ने कुटिया शब्द इस्तेमाल किया, हट, रामानंदाचार्य ने भी कहा हट, हट मतलब एक कुटिया। एक बस मुझे लेके गए, प्रभु जी हमारी छोटी सी कुटिया में आई है वृंदावन में, तो बहुत अच्छी बात है, चलो प्रसाद के रहिए पे गया था, जाके देखता हूँ, अरे क्या बंगला बना रहा है, छोटी सी कुटिया और बड़ी होगा तो कितना बड़ा होगा। और क्या करो, श्री भाष्य पढ़ना चाहिए, ऐसे हमारे लिए गोविंद भाष पढ़े, भागवत पढ़ो, क्या कर रहे हो उधर, भागवतम का नाम और निशान नहीं, कुछ कोई चीज का नाम और निशान नहीं, और बोलेंगे व्रजवास कर रहे हैं, फुलिशनेस। आचार्य ने इस प्रकार नहीं कहा, आचार्य के सिद्धांत जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार श्री रामानंदाचार्य और प्रभुपाद जी बीच बहुत उनके जीवनी में बिल्कुल एक जैसा है। फिर भी आचार्य मतलब रामानुज, गीत भाष्य मतलब रामानुज गीत भाष्य, ये विशेषता है रामानुजाचार्य का। और तीसरा योगदान श्री रामानुजाचार्य का यह है कि वो पंचरात्र की विधि का, पूजा का विधि को स्थापना किए, ये एस्टैब्लिश द पंचरात्र सिस्टम ऑफ वर्शिप। पंचरात्रिक सिस्टम वो है जिसके द्वारा हम भगवान विग्रह के सामने प्रकट होते हैं, और किसी भी व्यक्ति को ले लो, कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी हालत में जन्म लो, किसी को भी उस पंचरात्र के सिस्टम के अंदर डालो, जहां बाहर जो उसको ब्राह्मण बना के निकालो। क्योंकि कलयुग में करो शुद्ध संभव, भगवान की विग्रह की पूजा जो है केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, लेकिन अभी कलयुग में कोई ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला भी शूद्र है, क्योंकि कोई गुण नहीं है, कोई गर्भदान संस्कार नहीं, कुछ नहीं है। और ऐसे शास्त्र में कहा गया है जिन असुरों को कृष्ण ने वध नहीं किया तो वो सब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते कलयुग में। तो ये जो वैदिक विधि जो है इस कलयुग में लागू नहीं हो सकता, इसलिए खास करके भगवान ने रामानुजाचार्य को पंचरात्रि विधि को स्थापना करने के लिए, इसलिए उनको पंचरात्रि का आचार्य कहा जाता है। हम लोग पूजा करते हैं इस क्रम में भी, ये पंचरात्रि ग्रंथ आधारित है, पंचरात्रि विधि ग्रंथों को स्थापना करने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य को भेजे। पंचरात्रि ग्रंथों को या पंचरात्रि दीक्षा, हम लोग दीक्षा लेते हैं, वो पंचरात्र दीक्षा है। इसके बाद जब दीक्षा हुआ था उस दिन क्लास दिया था मैंने, कहा था क्या दीक्षा आपको प्राप्त हो रहा है, पंचरात्रिक दीक्षा है, पंच संस्कार। पंच संस्कार की विधि जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य ने स्थापना किया, वह भक्तों ठाकुर ने उसी पंच संस्कार की विधि जो रामानुजाचार्य ने स्थापना किया उसको भी हमारे संस्कार में भी गौड़ीय मठ में भी चलता है। वो श्लोक है ताप नाम पुण्य तथा नाम ताप पुण्य तथा नाम, ये जो हमी ही पंच संस्कार, ये जो श्लोक है श्रीपाद रामानुजाचार्य के ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसके ऊपर शिव भक्ति ठाकुर ने व्याख्या किया। इवन संन्यास दीक्षा भी जो श्री भक्ति ठाकुर के पहले छोटे धारा ने संन्यास दीक्षा करके था नहीं, लेकिन संन्यास की जो विधि की प्रणाली है वो श्री भक्ति ठाकुर दक्षिण मार्ग की यात्रा में निकल पड़े, तब वो गए थे श्री पेदम्बुदूर जो है वो श्रीपाद रामानुजाचार्य के जन्म स्थान है। उधर उन्होंने कैसे वैष्णव संन्यास होता है, त्रिदंड संन्यास कैसे लेना चाहिए, उसका विधि को श्री भक्तिचरण ठाकुर उधर से लिए और हमारी संस्था में गौड़ीय धारा में स्थापना किया। पहले गौड़ीय धारा में संन्यास की बात थी नहीं, कितने में आपने संन्यास दिया तो एक दंड संन्यास है, मध्य संप्रदाय में संन्यास तो भी एक दंड संन्यास है, तो दशविध संन्यास जो शंकराचार्य ने स्थापना किया वो संन्यास है, लेकिन त्रिदंड संन्यास रामानुज संप्रदाय में था उसको स्वीकार किया रामानुजाचार्य। इतने हद तक कि भगवान भी इतने प्रसन्न थे रामानुजाचार्य से, उन्होंने सोचा कि भगवान को क्या कहा था, जब तेरे गुरु, कहा कि गुरु बनने का मजा तो ले लिया मैंने, लेकिन शिष्य बनने का भी तो मजा नहीं आ रहा है, शिष्य बनने का मजा जो है वो कुछ और ही है, गुरु मतलब सरदर्द, शिष्य मतलब आनंद है। गुरु मतलब क्या है, सब शिष्य के हमारा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब सुनाएंगे। उसका जो भौतिक कलमश है, उसके ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन है, गुरु कौन है, उसका डस्टबिन है। वो महाराज ऐसा हो रहा है, परेशान हो रहा है, ये हो रहा है, और कोई मिला नहीं आपको ऐसा सुनाने के लिए। शिष्य मतलब महाराज दोनों हाथ उठाओ, नाचो गाओ, करो हरे राम संकीर्तन। तो इसलिए हम गुरु बनते हैं तो वो भी बड़ा सैक्रिफाइस है, ये बहुत बड़ा ये है, तपस्या है, ये कोई पदवी नहीं है, तपस्या है। वेरी बहुत बहुत झंझट की बात है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हार आज्ञा गुरु हो सारे देश, मेरी आज्ञा से गुरु बनो। तो कृष्ण ने कहा कि सारा जगत जो है मुझे गुरु के रूप में मानता है, लेकिन गुरु बनने का मेरा तो वो उसका तो अनुभव कर लिया है, लेकिन शिष्य बनने का अनुभव नहीं मुझे मिला, शिष्य बनना चाहता हूं। तो भगवान ने ऐसा सुंदर लीला रचा है। एक बार रामानुजाचार्य गए थे त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, वो तो आप सबको मालूम है, फेमस जगह, बहुत धनी मंदिर हो गया, बहुत सारा सोना मिला। उधर जाके उन्होंने सोचा कि मैं पंचरात्र विधि की स्थापना करूंगा, क्योंकि केरल में और जो पश्चिमी तटवर्ती जो कर्नाटक में पूरा इलाके में ये जो भगवान की विग्रह की सेवा जो तांत्रिक विधि से होता है, गुरुवायूर में भी तांत्रिक विधि से होता है, तंत्र लगे, मुद्राएं लगे हैं, पंचरात्र भी एक तंत्र है लेकिन सात्विक तंत्र है, लेकिन वो तंत्र कुछ अलग प्रकार का तंत्र है, जो मूल वैदिक तंत्र शास्त्र के अनुसार उधर केरल में और जो तटवर्ती कर्नाटक के इलाके में होता है, अभी भी ऐसे ही होता है उधर। तो रामानुजाचार्य ने सोचा उधर जाके मैं पंचरात्रिक विधि को स्थापना करूंगा। केरल के ब्राह्मण लोग जो उनको बहुत क्रोध आया, नंबूदरी पट्टदरी सबको, तो सोचा अभी इसको रामानुजाचार्य को इधर से निकाल देना है, इनको मार देना है। तब गरुड़देव ने क्या किया, इनको जैसे करने करने दो, रामानुजाचार्य को उठा के वापस तमिलनाडु पार क्रॉस करके लेके आए, एक जगह पहुंचा है जिसका नाम है चुपकुरुंगुटी, ऐसा एक जगह है। उधर रामानुजाचार्य को एक नदी के बीच में रखे, एक छोटा सा आइलैंड द्वीप जैसा था, दो नदी एक नदी के बीच में, उधर रामानुजाचार्य को रात को उठा के रखिए। रामानुजाचार्य सुबह उठ के देखते कहाँ है, तो दूसरी जगह है, तुमको मालूम पड़ा मैं तिरुपति में हूँ, अचानक में ट्रांसफर हो गया। तो तुरंत रामानुजाचार्य बुलाने लगे, तो मेरे साथ तो मेरा जो सेवक वो भी आया होगा, वड़गा करके एक सेवक था, वो भी आए होंगे, तो वड़गा वड़गा करके बुलाए तो एक बच्चा आया, वड़गा एक वो उनका सेवक आया, आके बोले लगे हम लोग कहाँ हैं। तो तुमने कहा कि हम लोग इधर हैं, इस जगह पे है, चलो भगवान के दर्शन करने जाते हैं। रामानुजाचार्य ने कहा इनकी आदत था रोज कि वो स्वयं तिलक लगाते थे और अपने शिष्य को अपने सेवक को तिलक लगाते थे। तो तिलक लगाया तो सेवक ने कहा कि आज आपका इतना सेवा कर रहा हूं, मुझे आप दीक्षा नहीं दिया अभी तक, ठीक है। रामानुजाचार्य ने उनको बुलाया और उनके कानों में उनको दीक्षा दिया। रामानुजाचार्य ने कहा जो फूल है उसकी दीक्षा करो, भगवान को अर्पण करने जाएंगे। रामानुजाचार्य आगे आगे जा रहे थे, बच्चा पीछे पीछे आ रहा था। तो जैसे मंदिर में प्रवेश किया रामानुजाचार्य, बच्चा जो है तुरंत भाग के आगे गया, आगे जाके मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया। रामानुजाचार्य सोचने लगे अभी तक तो पीछे शांति से आ रहा था, क्या हो गया इसको, ठीक है तो मेरा शिष्य अभी युवक है। थोड़ा अंदर जाके देखे तो उधर भगवान का दर्शन किए, तुमने देखा वही तिलक जो रामानुजाचार्य ने लगाया था अपने लिए और अपने अपने सेवक के लिए, वो तिलक भगवान के ऊपर। तब रामानुजाचार्य की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये भगवान की है, आप मेरे शिष्य के रूप में कैसे आए। तो भगवान ने कहा रामानुजाचार्य को, अतीत में मैं आपका सेवा करना चाहता था, शिष्य बनना चाहता था, तो पंचरात्रिक दीक्षा लेने का लालसा मुझे भी थी। ये चुपकुरुंगड़ी ऐसा जगह है, उधर भगवान का विग्रह है, अभी उधर जाएंगे आपको सुबह के टाइम दर्शन करने जाएंगे, भगवान उधर तिलक लगाते हैं वो देते हैं। तो उधर दक्षिण भारत की भाषा में तमिल भाषा में भगवान को पेरुमाल कहा जाता है, जैसे गुजरात में अन्य जगह ठाकुर जी कहते हैं ना, भगवान को ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे इधर दक्षिण भारत में पेरुमाल कहते हैं। लेकिन उस जगह भगवान को पेरुमाल नहीं बोलते हैं, उस जगह भगवान को भगवान नहीं कहेंगे, उनको नंबी कहते हैं, नंबी मतलब शिष्य। उधर उधर विग्रह को नंबी कहेंगे, नंबी मतलब शिष्य है, शिष्य है रामानुजाचार्य का शिष्य। तो ऐसे अनेकों अनेकों श्रीपद रामानुजा ने लीला किए हैं, तो जन्म अद्भुत है, उनके सारे कार्य अद्भुत है। रामानुजाचार्य का लीला इतना मधुर है, इतना अच्छा, इतना सुंदर है, उनके शिष्यों की लीला भी इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है। हजार साल का संप्रदाय है, 1000 ईयर्स का संप्रदाय, अभी भी इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतना सुंदर सेवा होता है। और श्री वैष्णव को श्री वैष्णव कहा जाता है, हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से है, भले ही हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से है, जो तत्व के दृष्टिकोण से जो सिद्धांत है वो मध्वाचार्य का है, लेकिन जो मूड है, मूड ऑफ वर्शिप, साधना के स्तर में खास करके शरणागति के स्तर की जो बातें हैं, शरणागति का जो भावना है, जो सिद्धांत है, वो सब चीजें हमको रामानुजाचार्य से प्राप्त होता है। मेरी गणना यह है कि हमारा सिद्धांत जो है 70% रामानुज सिद्धांत, 70%। इसमें श्री भक्तिनाथ ठाकुर जो यमुनाचार्य, जो रामानुजाचार्य के गुरु है, उनके द्वारा रचना किए गए एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्तोत्र रत्न। वो स्तोत्र रत्न को वो सरल बंगला भाषा में भजन के रूप में लिखते हैं, जो गीतावली में प्राप्त होता है। उसके अंदर पहला जो चैप्टर है यमुना भावावली, यमुनाचार्य के भावावली, भावों को उन्होंने सरल बंगला भाषा में व्यक्त किया। और जहां चैतन्य महाप्रभु ने और अनेकों अनेकों आचार्य, खासकर भक्तिनाथ ठाकुर, अन्य जितने भी आचार्य, गौड़ी वचन आचार्य, जहां जहां दासरथ का कोटेशन हो, शरणागति का कोटेशन हो, सीधा आपको रामानुज संप्रदाय से प्राप्त होता है। यमुनाचार्य के स्तोत्र रत्न, रामानुजाचार्य गद्य श्रेय, शरणागति गद्य, कुलशेखर आलवार के मुकुंद महाराज स्तोत्र, इनसे ही सब कोटेशन देते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर भजन रस्य रचना करते हैं। भजन रस्य में तृणाद भी सुनी चाहिए ना, जो हमारा साधना के साधक के लिए, हर साधक के लिए जो आभूषण वाले श्लोक है, जहां जिसको गले में हमेशा धारण करके रहना चाहिए, उस तृणाद भी सुनी चाहिए ना। उस श्लोक की ओर व्याख्या करते हुए भक्तिनाथ ठाकुर भजन रस में सारे श्लोक मुकुंदमाला स्तोत्र और स्तोत्र रत्न से वो स्वीकार करते हैं। तो बता सकते हैं कि ये संप्रदाय कितने महान है और रामानुजाचार्य हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसके विषय में जो चर्चा के समाप्त करेंगे उनके प्रणाम मंत्र के उच्चारण के द्वारा, जो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरुक्मव्यामो तत्प्राणित्राय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य तयेक सिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। श्रीपाद रामानुजाचार्य की, भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।